پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں۔ آج کل کے حالات کے اندر جہاں پر اتنا تذبذب پایا جاتا ہے اور جہاں پر ایک طرف یہ جوش و جذبہ ہے جو کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، مسلمانوں کا یہ جذبہ عبادت کا عروج پر ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو COVID-19 کے حوالے سے جو کرائسس ہے، یہاں پر ایک بڑی ڈیوائڈ اپ پائی جاتی ہے، اور ایون ڈاکٹرز نے آج کہہ دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ حکومت نے بھی بہت لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے اس حوالے سے، اور جو علماء حضرات ہیں انہوں نے بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جب انہوں نے یہ 20 نکاتی معاہدہ کیا ہے یا یہ ایک اعلامیہ بنایا ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک، اب یہ بھی زیادہ یقینی طور پر آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا، حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر نے یہاں کہا یہ ہمارا ملک آزاد ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر جائیں گے تو ان گائیڈ لائنز کے تحت جائیں گے، کیا اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے سر؟ اتنا ضروری ہے جب سعودی عربیہ کے اندر عمرہ ہم نہیں کر سکتے، اس وقت حالات کیسے ہیں، حج کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہے، تراویح کے اوپر پابندی ہے، مساجد میں لوگ نہیں جا سکیں گے، تو ایسی حالات میں پاکستان کے اندر علماء اکرام نے یہ ٹھیک سمجھا جی کہ حکومت کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لیا جائے، اس کی کوئی گنجائش بنتی تھی سر؟
میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا موقف ناقابل فہم ہے، یہ معاہدہ اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم ہے۔ آپ ڈاکٹروں کی بات سنیے، طبی ماہرین کی بات سنیے، وہ اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اس وقت اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پابند کیا جائے۔ بارے دین میں یہ بات طے ہے کہ فرض عبادات بھی اگر کہیں جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو دوسری صورت تبدیل کر لیتی ہیں۔ نماز کو آپ دیکھ لیجئے، فرض ہے 5 وقت کی نماز کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی نماز اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں اندیشہ ہو، تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیں، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، یہ بتایا گیا ہے نماز قصر کر لیں۔ اس سے آگے جا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی صورت بھی نہ ہو تو فرجالاً و رکبانا، یہ نماز آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ اس کو کسی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں۔ آپ وضو کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، تو کہا گیا کہ تیمم کر لیں۔ ساری تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ عبادات کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یسر چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں عبادات کو، وہ استقرار کے درجے میں جا کر آپ کو کوئی استثناء نہیں دیتے، بلکہ یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ اگر مشقت تحمل سے زیادہ ہو گئی ہے تو عبادت میں رخصت کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تو لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، یعنی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں، میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں، یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ تراویح کے لیے مسجد میں جانا چاہیے، نہ باجماعت نماز کے لیے جانا چاہیے، حج و عمرہ پر پابندی لگ گئی ہے یا لگ جائے گی، بظاہر یہی لگ رہا ہے، یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس اصول پر کیا گیا ہے کہ دین میں انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، اور انسانی جان کو کسی حال میں بھی خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔
صحیح سر، یہ فرمائیے گا، اب ذرا تھوڑا سا یہاں آرگیومنٹ جو دیا جا رہا ہے دو ہے، ایک حکومت کہتی ہے کہ جی ہم لاک ڈاؤن کریں گے، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جی معاش کا مسئلہ ہے، لوگ گھروں میں قید ہوں گے تو معاشی طور پر بہت سے لوگ دب جائیں گے، غربت کا شکار ہوں گے، ایک تو یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیا جاتا ہے، بہت سے جو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو مساجد کے اندر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں، حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ رک جائیں، ایڈوائز کرتی ہے رک جائیں، اور پریزیڈنٹ پاکستان کہتے ہیں کہ جی یہ اجماع ہے، اب اس سے اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو گناہ کا ارتکاب ہوگا، ایسی صورتحال میں حکومت کیا کرے؟ یہاں پر مذہبی جذبات ہی اتنے عروج پر ہیں، علماء کو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو موجود ہیں وہ اتنے کنسرنڈ ہیں یا سینسٹیو ہیں اس معاملے میں، حکومت کیا کرے؟
بارے عوام کی بہت زیادہ تعداد، بہت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جاہل، हमारे उलमा ने इस मौके पर बेबसीरती का सबूत दिया है, उन्हें आगे बढ़कर खुद रहनुमा बनना चाहिए था, और ये जो बातें कही जा रही हैं आलमी सतह पर, ये खुद लोगों को बतानी चाहिए थी। हमारी हुकूमत ने जिस सीरत व किरदार का मुजाहरा किया है, उससे बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो कुव्वते फैसला से महरूम है। देखिए, दो ही सूरतें हैं, या आप लॉकडाउन करेंगे और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल का हल तलाश करेंगे, और या आप लोगों को आज़ादी दे देंगे कि वो जाएं फिर जहां जाते हैं, तो जो मरने वाले होंगे या मरीज होंगे उनके लिए बंदोबस्त करेंगे। इसमें दरमियान का कोई रास्ता है ही नहीं। कुछ हमने सुना समझा है इस पिछले 2 महीने में, उससे ये हकीकत बिल्कुल वाजे है। लोगों को खोल दीजिए, फिर कोई पाबंदी ना लगाइए, वो बाजारों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, जो जी चाहे करें, आप सिर्फ अस्पताल बनाइए ताकि वहां आप इलाज कर सकें। कितने मरीज हैं जिनका आप इलाज कर सकेंगे, कितने फील्ड अस्पताल बना सकेंगे, तो हुकूमत की सारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए थी। और अगर लॉकडाउन करना है तो फिर लॉकडाउन होना चाहिए जिस तरह के करने का हक है, तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि जिन लोगों को माश का मसला दरपेश है, हम एक फंड कायम करें, लोगों को आमादा करें। हमारे यहाँ लोग बहुत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुनिया भर से अपील करें, हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, और ये कोशिश है कि उन लोगों तक राशन पहुँचाए। आप यकसू होकर मामला करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये जो तजब्जुब की कैफियत है, ये तो मोहलिक हो जाती है, इसके नतज बहुत खतरनाक।
गानी साहब, ये फरमाइएगा कि अब माह रमज़ान है, आमद आमद है उसकी, मैं फिर ये कहूँगा लोग बड़े सेंसिटिव हैं, तरावी की ज़रा अहमियत इसकी थोड़ी सी बयान फरमाइएगा, आप बेहतर बयान फरमा सकते हैं कि लोगों को थोड़ी सी ढारस भी हो जाए आपके तवसुत से, कि अगर खुदा न खास्ता वो मसाजिद में नहीं जा सकते तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है लोगों के पास?
पहली तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि ये तरावी नमाज दर हकीकत तहज्जुद की नमाज है। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज की गई थी, ये मुसलमानों के लिए एक नफल नमाज है। इसके पढ़ने का सही वक्त सोकर उठने का है, तहज्जुद का वक्त है, और ये नमाज हमेशा अकेले पढ़ी जाती रही है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अकेले पढ़ी है, ये सैयद अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ऐसी पढ़ी जाती थी। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लम से इजाज़त चाही कि वो चूंकि उठ नहीं सकते तहज्जुद के वक्त, तो क्या वो इशा के बाद ये नमाज पढ़ लिया करें, तो आपने आम लोगों को इजाज़त दी, खुद कभी नहीं पढ़ी। तो ये एक नफल नमाज है जिसकी इस पहले वक्त में पढ़ने की रुख्सत दी गई है, इसका असली वक्त तहज्जुद का वक्त है। ये नफल नमाज की हैसियत से पढ़ी जाएगी, और इसकी फजीलत यही है कि ये अकेले में पढ़ी जाए। हमारे यहाँ इसको मस्जिदों से मुअल्लक कर लिया गया है, वरना ये तो अलग से पढ़नी चाहिए, अकेले में पढ़नी चाहिए। ये अल्लाह से मुनाजात के लिए, अल्लाह ताला के साथ सरगोशियां करने के लिए पढ़ी जाती है इस नमाज के लिए, तो सही वक्त इसीलिए रात को उठकर पढ़ने का मुकर्रर किया गया है। ये बड़ी गलतफहमी है हमारे यहाँ, बाकी दुनिया चूंकि इस मामले में वाजे है तो उनको फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ लोगों के लिए बेहतरीन मौका था इस कोरोना की वजह से, तो वो इस नमाज को इसके अफजल वक्त में पढ़ते और इसके बेहतरीन तरीके पर पढ़ते जो दीन में इसके लिए मुकरर किया गया है, और वो घर में पढ़ने का।
अब गामी साहब, इस तरह आपने फरमाया, अब हम भी माजरत के साथ ही कहेंगे कि लोग शायद इस इल्म से महरूम हैं, लोगों को इस बात का इतना इल्म नहीं, तो ये भी एक तासुर है कि जी अगर मसाजिद में नहीं जाएंगे, माह रमज़ान में नहीं जा पाएंगे तो सवाब कम होगा, घरों में पढ़ेंगे तो उसका सवाब उसके बराबर नहीं है जो हम मसाजिद में नमाज अता करते हैं, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा।
मैं बहुत अदब के साथ एक बात अर्ज करूँगा, इससे ये मालूम होता है कि हमारे यहाँ लोगों को मस्जिदों से ये तो बताया गया है कि मस्जिद में जाने का क्या अजर है, नमाज पढ़ने का क्या अजर है, रोजा रखने का क्या अजर है, ये नहीं बताया गया कि किसी इंसानी जान को खतरे में डालना जुर्म कितना बड़ा है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं अपनी जान को अगर खतरे में डालता हूँ जानते बूझते, तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है, और अगर मैं दूसरों की जान को खतरे में डालता हूँ तो ये इकदाम कत्ल के मुतरादिफ है। तो यहाँ सूरत हाल ये नहीं है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जी अजर कमाने का मौका है, आप मस्जिद में चले जाइए। जेर बहस मसला ये है कि आपका जाना आपके लिए, आपके खानदान के लिए, वहाँ आने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बन रहा है, इसमें लाजिम है कि आप मस्जिद में ना जाएं। आप जाएंगे तो आप एक गुनाह का इर्तकाब करेंगे, क्योंकि आप दूसरों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। तो जहां तक इसका ताल्लुक है कि आपने इबादत करनी है, अल्लाह से मुनाजात करनी है, तो हमारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जोएलत लिए अर्ज व मस्जिद व तहूरा, मेरे लिए तो ये सारी जमीन मस्जिद और पाकीजा बना दी गई है, जहां से चाहे तयम्मुम कर लीजिए, जहां चाहे नमाज पढ़ लीजिए। तो मेरे नजदीक तो लोगों के लिए बेहतरीन मौका था कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते, अपने घर के किसी गोशे का इंतखाब करते और एक तरह से एतकाफ किसी सूरत पैदा कर लेते, कुरान पढ़ते, दीन को समझते, इससे फायदा उठाते कि अल्लाह ताला ने दुनिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, तो इसमें हम अपने ऊपर गौर कर लें, अपनी तरबियत कर लें, अपने इल्म में इजाफा कर लें। आपने देखा होगा कि जालंधर, अमृतसर और सियालकोट में पहाड़ नजर आने लग गए हैं कि दुनिया में गर्दो गुबार छट गया, तो हम भी अपने दिलों का गर्दो गुबार कुछ घर में बैठ के दूर कर लेते, लेकिन हम असल में आदि हो गए हंगामा आराई के। हमारे यहाँ रमजान में भी आपने देखा है कि मीडिया भी एक प्रोग्रामों की बहार पैदा करने की कोशिश करता है, दरा हाले के रमजान का सबक जो है वो हकीकत में खलबत में जाना, अकेले में जाना, एतकाफ में जाना, अल्लाह के साथ लौ लगाना है। ये वो चीज है जो रमजान में मतलूब है, ये मस्जिदों के हंगामे रमजान में मतलूब ही नहीं।
गांधी साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, क्योंकि क्राइसिस की सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में कोई लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं जब आपको देखते हैं कि खुसूसी दुआ इस हवाले से, अल्लाह ताला के हुजूर जब इस्तगफार हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो खुसूसी दुआ इस हवाले से को है तो उसमें भी रहनुमाई फरमाइएगा ताकि हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
ये सबसे अच्छी दुआ तो वो होती है जो आप अपनी ज़ुबान में करते हैं, अपने शिकस्ता दिल के साथ करते हैं, अपनी पेशानी खुदा के सामने रख के करते हैं। जो टूटे फूटे अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकलते हैं वो कायनात का परवरदिगार है, वो सुनता है। इस वक्त पूरी मखलूक पर एक आफत आई हुई है, हम में से हर शख्स को अपने परवरदिगार से रजू करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों का एहसास करना चाहिए। और ये सारी मखलूक खुदा का कुंबा है, बगैर किसी मजहब की तफरीक के, मुल्क की तफरीक के, कौम की तफरीक के, सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इन पर अपना रहम फरमाए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मुख्तसर दुआ विर्दे जुबान करने के लिए फरमाया है, उसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुक अल अफ्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ, दरगुजर की दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आफियत मांगता हूँ, मैं तेरी में आता हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये दुआ विर्दे जुबान कीजिए और सबसे बढ़कर अपनी जुबान में अपने परवरदिगार को पुकारिए, ये उसका बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में खुदा को याद किया जाएगा तो आलमी सतह पर मौत की याद होगी और हम याद रखेंगे कि एक दिन हमें अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश होना है।
बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अहमद गामदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें।